18 ठंड थी बड़ी। ओ देखे 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 देखे
ओ
भाई, औरत तो भाग के बाहर ही चली गई, आदमी भी भागना शुरू हो गया, चूहा आ गया। अब देखिए जी, स्पेन की पार्लियामेंट है, अब चूहा आ गया। बाय द वे, स्पेन का जिक्र हुआ तो मैं बेल्जियम का भी जिक्र कर, देखिए वो भी जो चीता औरत है ना अपनी टेबल के ऊपर अपनी कुर्सी पे बैठी
हुई, वो बैठ गई है।
नो, ये देखिए सारी की सारी औरतें बैठी हुई हैं।
वो देख रही है कि आदमी क्या कर रहा है, आदमी ढूंढ रहा है। और अब ये आगे हो सकता है इसको और दिखाए कि वो जो है वो सारी जितने भी खातिन है वो सारे के सारे, और ये स्मार्ट लोग जो है ना ये बीच में आ गए, बीच में आगे खड़े हो गए। चूहे को पता नहीं है वो वहां भी आएगा।
ये देखें, एक औरत सिर्फ भागी है मगर आदमी ज्यादा भाग रहे हैं। वही बात है ना कि अब आपके दिल में आप औरतों से कदूरत है तो आप औरतों का नाम दे देते हैं। देख लें, आदमी भी कोई भी अपनी सीट के ऊपर नहीं है, ठीक है।
वो ढूंढ रहे ना, वो तो ढूंढ रहे।
बाय द वे, जब ये स्पेन की आप समझिएगा कि यहां पे अगर चूहा आ सकता है तो आपके घर में भी चूहा आ सकता है। अपने घर के दरवाजों को बंद रखिएगा।
इनको चाहिए ये अलीजा से कांटेक्ट करें,
अलीजा की कंपनी से कांटेक्ट करें,
स्पेन वाले जो है ना ये इनको चाहिए कि अलीजा को चाहिए फॉरन से कांटेक्ट करेंगे,
कांटेक्ट करें कि अगर आपकी असेंबली के बीच में चूहा आ गया तो मुझसे रब्ता करो साहब।
यस,
अच्छा आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, इंसान ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनता चला जा रहा है। और आज तो बल्कि चाइना के बारे में भी पता चला कि शदीद बारिशों का पेश खैमा है। और मुझे याद है जब हम पढ़ा करते होते थे, हम स्टूडेंट हुआ करते थे, तो गर्मियों की छुट्टियां लंबियां हो जाती थी क्योंकि इतनी मानसून की बारिशें होती थी, इतनी बारिशें, सैलाब आया करते होते थे, सांप आ जाते थे, लोगों के जानवर बह जाते थे, लोगों की बस्तियों की बस्तियां बह जाया करती थी। और अब तो, और पाकिस्तान में जब आता है ना तो हम तो बड़े कहते हैं ना अपने जख्मों को कुरेदने के बड़े कायल हैं। आपको पता है कि बेल्जियम में बारिश आई है और ऐसी तूफानी बारिशें आई हैं कि वो बारिशें गाड़ियों को अपने साथ बहा के ले गई, लोगों के घरों में
ऐसा
पानी
नहीं, जैसे दो दिन लगातार, दो दिन चाइना के एक सूबे में जो बारिशें और जो तूफान आया है, लोग जो खड़े हुए हैं उनके गर्दनों तक पानी है।
Who's responsible for this global warming?
Global warming.
These are the human beings. These are the human beings who are responsible for this global warming. और बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का साथ रहने का। स्टूडियो का नंबर 4166201778। चिली किक्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। चिली किक्स इसका नाम है। चिली किक्स मतलब चिकन की डिशेज आप खाते हैं। ये ब्रांड मिसिसागा में डिक्सी एंड डेरी के इंटरसेक्शन पे है। डिक्सी और डेरी के इंटरसेक्शन पे आपने आइसक्रीम खानी है, दही भल्ले खाने ने। वो दही भल्ले इतने मजे के दही पड़े कि मैं आपको क्या बताऊं। दही भल्ले, हमारे पाकिस्तानी स्टाइल के दही भल्ले, चने की चाट, समोसे की चाट, समोसे के बीच में चने मिला के समोसा, चना समोसा जिसको कहते हैं। इसके अलावा आप फ्राइज लेना है, आपने बीफ बर्गर्स देने हैं, चिकन विंग्स लेना है, आपने क्रिस्पी बर्गर्स देने हैं। Isn't it mouth watering? Yes, it is. मगर दही भल्ले खाने के लिए पहुंचे, आइसक्रीम खाने के लिए पहुंचे, चिली किक्स इसका नाम है। 6965 डेवन ड्राइव, यूनिट नंबर 1, मिसिसागा। 4164442267, 4442267। चलिए फिर एक गीत की तरफ आपको लेके चलती हूँ। और ये गीत टॉप ऑफ द आवर का वक्त हुआ, चलो फिर टॉप ऑफ द आवर सुन लो।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM, यंगस्टाउन टोरंटो।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 5196220660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
पूरे ऑन्टेरियो में लाखों लोग अपनी कोविड 19 की वैक्सीन हासिल कर चुके हैं। हेल्थ कनाडा की मंजूर शुदा वैक्सीन अस्पतालों, डॉक्टर्स के दफातर, फार्मेसीज और अवामी वैक्सीनेशन के मुकामात पर दस्तियाब हैं। अपना किरदार अदा करें, अपनी वैक्सीन हासिल करें। 300 जुबानों में मदद के लिए ontario.ca/bookvaccine पर जाएं या 1-888-999-6488 पर कॉल करें। हुकूमत ऑन्टेरियो की तरफ से अदायगी की गई।
For fast, affordable, reliable and unlimited internet is starting from $39.99 for your business or home. Contact gorogh.ca at gorogh.ca. Prices are guaranteed. for life with no annual contract. Plus, get unlimited bandwidth and pay no modem rental fees. Fast, worry-free internet and saving for life are just click away. Visit gorog.ca. That's GORROGUE.ca. Or call 647-273-3291 to place your order today.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे
S&S Lawyers को इन्ना सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000
कोविड 19 करके सारा काम ऑनलाइन हो गया ग्रोसरी ऑनलाइन हो गई ट्यूशन ऑनलाइन हो गई और ता होर कल मेनू रिया ने दसिया कि सोडी फर्नीचर वाले भी हुन ऑनलाइन फर्नीचर सेल कर रहे हैं
बिल्कुल ठीक सुनिया ते हुन इना दा स्टोर भी खुल गया है
ब्रम्पटन दे सब तो वड़े फर्नीचर स्टोर्स विचो एक सोडी फर्नीचर ते हुन कोविड 19 दे दौरान इना दी वेबसाइट sodifurniture.com ते जाओ अते अपनी पसंद दा फर्नीचर सिलेक्ट करो स्टोर विच आके सेम फर्नीचर देखो अते सेम प्राइस ते लो इना दी कैनेडी लोकेशन हुन खुल चुकी है फॉर मोर इनफॉरमेशन कॉल 905-874-7171
Akal Truck and Loom Tade truck badshah di quality service repair oil change wash te maintenance
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਰੀਅਨ ਨਵੇਂ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਦਾ ਟਾਇਰਸ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਵਾਰੰਟੀ
ਅਕਾਲ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਲੂਪ 1776 ਮੇਅਰਸਾਈਡ ਡਰਾਈਵ 905-565-1100
Teletime Electronics LEDs aur home appliances ki hottest aur branded range ke saath 0% finance guarantee on lowest prices aur free delivery in GTA to intezar kaisa abhi visit kare Teletime Brampton 280 Rutherford Road ya Springdale Square Shopping Center ya Etobicoke 1770 Albion Road ya 9909 Markham Road مزید تفصیلات کے لیے کال کریں 905-455-1666 ٹیلی ٹائم الیکٹرونکس
ایشین فوڈ سینٹر 905-793-1338 آپ کے کچن کی تمام ضروریات ایک ہی چھت تلے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز گروسریز اینڈ سٹیفلز فریش ڈیری اینڈ ایگ بیوریج اینڈ کنفیکشنری برانڈیڈ فوڈز پرسنل کیئر اینڈ ہاؤس ہولڈ سویٹس اینڈ سموساز Order now for in-store free pickup 905-793-1338. Home delivery is also available. Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
क्या आपकी पॉलिसी इस पेंडेमिक में आपको कवर कर रही है मालूम कीजिए मुझसे कॉन्टेक्ट करके मैं हूँ फजल वदूद इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विसेज से मेरा नंबर है 905-607-5000 27 साल का इंश्योरेंस और अंडरराइटिंग का मेरा एक्सपीरियंस है मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको एक ऐसा प्लान दिलवाया जाए जो कि बेहतरीन हो और गारंटेड लोएस्ट रेट पे हो कॉल कीजिए 905-607-5000 और हाँ हर जुमेरात शाम को चैनल 770 पे मेरा प्रोग्राम सुनना ना भूलिएगा जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं बेहतरीन टिप्स इंश्योरेंस के बारे में
क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तालीम के मैदान में सबसे आगे हों? तो उसे आज ही इंटरनेशनल स्कूल ऑफ कैम्ब्रिज में रजिस्टर करवाएं, जिसे फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने टॉप पब्लिक साउथ वेस्टर्न ओंटारियो का स्कूल करार दिया है स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड न्यू स्कूल बिल्डिंग एंड अ ब्रांड न्यू ग्रैंड जिम मजीद मालूम के लिए कॉल करें 519-740-6855
قرضے سے نجات کے لیے ایک ہی نام محمد صدیق آل دا سولوشن پرسکون زندگی اور کریڈٹرز کی کال سے چھٹکارا
محمد صدیق آل ڈیٹ سولوشن بینک رپسی انسالوینسی کنسالیڈیشن کرتے ہیں اپ ٹو 80% محمد صدیق آپ کے لیے کام کرتے ہیں پرسکون زندگی اچھی صحت اور لمبی عمر کی ضامن اپنی زندگی کو پرسکون کرنے کے لیے قرضوں سے پاک کرنے کے لیے رابطہ کیجیے محمد صدیق 416-671-0577
خواجہ صاحب السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ عید مبارک ٹو آل دا لسنرز. آپ نے پیغام دیا, بہت شکریہ. خدا کرے کہ محبتوں کی ترویج اسی طرح سے جاری رہے. آمین سم آمین. ایک ملاقات کی طرف لے کر کے آپ کو بڑھنا ہے. میں ویسے آپ کو ایک گانا بھی سنانا چاہتی تھی پر نہیں, چھڈ پڑے جی. چلیں گانا نہیں تو ایک پوئم سنیے گا آپ میری, بڑی پیاری پوئم ہے. وہ کہتے ہیں کہ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر عنایت پر. کبھی کبھی ہنسنا بھی اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے. وہ کہتے ہیں نا ریڈرز ڈائجسٹ میں ایک زمانے کا کہا جاتا تھا لافٹر از دا بیسٹ میڈیسن, یاد ہے نا آپ کو. چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر عنایت پر کہ بے بنیاد ہیں یہ باتیں, سبھی رشتے سبھی ناتے ضرورت کی ہیں ایجادیں, کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا کہ سب ہے پھر لفظوں کا, ہے سارا کھیل حرفوں کا, نہ ہے محبوب کوئی بھی جسے ہم زندگی کہتے جسے ہم شاعری کہتے. غزل کا قافیہ تھا جو, نظم کا عنوان تھا جو, وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا, وقت سے آگے چلتا تھا جو سایہ بن کے رہتا تھا, جدا اب اس کے رستے ہیں چلو کچھ دیر ہنستے ہیں. آف کورس کوئی چیز بھی سٹیبل نہیں ہوا کرتی, اور جہاں پر کوئی محسوس کرے کہ یو نو وٹ وہ کوئی چیز بھی, میں ویسے اس کو اب کس انداز میں بیان کروں کہ جب آپ کسی چیز کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں نا تو وہ چیزیں آپ کو زیادہ بودر کرتی ہیں. تو وہ کسی نے کہا نا کہ شکست کس کا نام ہے, شکست دراصل توقعات, ہماری ایکسپیکٹیشنز کے فیلئر کا نام شکست ہے. جب ہم کسی سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو دیٹ از فیلئر آف آر ایکسپیکٹیشنز. اینی ویز چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر عنایت پر کہ بے بنیاد ہیں یہ باتیں, سبھی رشتے سبھی ناطے ضرورت کی ہیں ایجادیں, کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا کہ سب ہے پھر لفظوں کا, ہے سارا کھیل حرفوں کا, نہ ہے محبوب کوئی بھی جسے ہم زندگی کہتے جسے ہم شاعری کہتے. غزل کا قافیہ تھا جو, نظم کا عنوان تھا جو, وہ لہجہ جب بدلتا تھا قیامت خیز لگتا تھا, وقت سے آگے چلتا تھا جو سایہ بن کے رہتا تھا, جدا اب اس کے رستے ہیں چلو کچھ دیر ہنستے ہیں. اور ایک اسی کے ساتھ ہی اگلی پوئم ہے, اس کے ساتھ ایک ملاقات کی طرف لے کے چڑھوں گی. یہ بھی بہت خوبصورت پوئم ہے, یہ بھی رشتوں اور بندھنوں کے مطابق. آف کورس یہ رشتے زندگی میں بہت ضروری بھی ہوا کرتے ہیں. الفاظ کے جھوٹے بندھن میں اغراض کے گہرے پردوں میں, الفاظ کے جھوٹے بندھن میں اغراض کے گہرے پردوں میں ہر شخص محبت کرتا ہے حالانکہ محبت کچھ بھی نہیں. سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں, سب دل رکھنے کی باتیں ہیں, کب کون کسی کا ہوتا ہے, سب اصلی روپ چھپاتے ہیں, سب اصلی روپ چھپاتے ہیں. احساس سے خالی لوگ یہاں, احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں, ایک بار نگاہوں میں بس کے پھر عمر بھر رلاتے ہیں. یہ عشق محبت مہر وفا سب رسمی رسمی باتیں ہیں, ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے. اینی ویز
آخر کا اس کا ایک دم صحیح ورڈ تھا,
ہر شخص خودی کی مستی میں بس اپنی خاطر جیتا ہے. ایکچولی میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
دس از
آل وٹ اٹ از. ایگزیکٹلی, بالکل آپ نے صحیح کہا.
اپنا مفاد
ہر انسان کا, اپنا مفاد کوئی کسی ایک کے لیے نہیں, ہر انسان اپنے مفادات کی ضد کے بیچ میں اور مفادات کی جنگ کے بیچ میں جاری ہے,
اسی لیے رشتے ٹوٹتے ہیں مفادات کی وجہ سے.
بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا, بالکل صحیح کہا. اور پھر وہاں پہ لوگ امپوز کرنا شروع کر دیں تو پھر رشتوں کی تو پھر کوئی دلیل رہتی نہیں ہے. اینی ویز ایک ملاقات کی طرف لے کر کے بڑھتے ہیں. آپ کو ہوتا پتا کیا ہے کہ ہر انسان اپنے لحاظ سے چیزوں کو بدلنے میں ماہر ہوا کرتا ہے, اور اس دنیا میں آج کل رشتے اسی لیے زیادہ ٹوٹتے ہیں کیونکہ بعض, اور ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے, جس انسان کو رشتوں کی قدر نہ ہو اس سے بہتر ہے وقت پہ اس رشتے کو توڑ دیا جائے. بہت خوبصورت بات. اور میرا خیال ہے کہ اگر ایک زمانہ تھا جب رشتے ناتوں کو سنبھالنے کے لیے پہلے خود کاوش کی جاتی تھی, بڑے بوڑھوں کو شامل کیا جاتا تھا, مگر اگر کوئی ابیوسو ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ وہ رشتے ختم کر دیے جائیں. एनीवेज एक मुलाकात की तरफ लेकर के बढ़ते हैं. वैसे तो हमने हमेशा रिश्तों की तरवीज की. अगर मैं कुरान पाक के हवाले से बात कहती हूँ तो कहा यही जाता है, अगेन माजिद भाई माजिद जमाल साहब हमेशा मुझे कहा करते होते हैं अपनी बात को इम्पोज ना करें. मैं इम्पोज नहीं कर रही, मगर कहते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह जो है, और बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो हम जब करते हैं तो हमको एहसास भी नहीं होता, दो लोगों के दरमियान रिश्तों को तोड़ने का है. यानी बाज़ औक़ात अगर आपको मसलहतन गलत बयानी भी करनी पड़े तो हम और बहुत सी बातों में गलत बयानी कर लेते हैं, मगर दो रिश्तों को संभालने में हम गलत बयानी नहीं करना चाहते. एनीवेज एक मुलाकात, और मुलाकात में कौन है हमारे साथ?
कौकब जावेद.
कौकब जावेद, आई डोंट नो इनका नाम कौकब क्यों है, आई डोंट नो.
अभी भी टाइम, अभी
कौकब तो लड़की का नाम होता है, मगर अच्छा पता क्या बात है माइंड, मगर कौकब जावेद बहुत खूबसूरत इंसान है. मेरी बात को तो खैर माइंड नहीं करते, उनको पता है, मेरा ख्याल है इन्होंने भी मुजफ्फर की वो बात सुनी थी कि आरफा बचपन में गिरी थी, इसके सर पे चोट लगी थी. आज मैंने किसी को बताया, मैंने कहा दरअसल मैं बचपन में गिर गई थी ना तो मेरे सर के ऊपर चोट लग गई थी. वो कहते हो बड़ा अफसोस हुआ सुन के. आई सेड नो, मैं सच्ची मुच्ची नहीं गिरी थी. दिस इज व्हाट माय हस्बैंड बिलीव्ड इन, ये बचपन में गिरी थी.
He was absolutely right. He was absolutely right. 100%.
I know. और जब भी मैंने मुजफ्फर की किसी बात पे इनहराफ किया उसकी मैंने सजा बहुत बुरी पाई. कौकब जावेद, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसी हैं माजद भाई? सब ठीक ठाक है. आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक.
आप पांच भाई और आपकी बहन कोई नहीं थी ना, और आप सबसे छोटे हैं इसलिए आपकी अम्मी ने आपका नाम कौकब रखा था.
अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता अम्मी ने मेरा नाम कौकब क्यों रखा था.
कौकब का मतलब पता है आपको?
जी बिल्कुल पता.
हाँ, बताइए.
सितारा.
हाँ, चमकता सितारा.
हाँ जी बिल्कुल स्टार. तो मैं इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ठीक है कौकब, ठीक है सितारा तो हूँ ना, कौकब छड्डो, कौकब सितारा तो है.
सही कहा आपने.
ओ एक सेकंड लूंगा जी. काफी अर्सा पहले किसी ने कॉल किया, कहते लगे मैंने कौकब से बात करनी है. मैं कि जी बोल रहा हूँ. नहीं नहीं मैंने कौकब से बात करनी. मैं कि जी बोल रहा हूँ. नहीं नहीं कौकब.
कौकब जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर ऑन गोइंग सपोर्ट, एंड आई रिक्वेस्ट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि मॉर्गेज के हवाले से एक बार मशवरे के लिए ज़रूर कॉल कीजिएगा कौकब जावेद. अगर आप न्यू कमर हैं तो मॉर्गेज अरेंज करके देंगे. अगर आपने कोई फार्म, हॉबी फार्म अगर आपने लेना है तो मॉर्गेज करवा के देंगे आपको. कौकब जावेद का नंबर 416-454-6065. आई नो हिम फॉर लास्ट 14-15 years एंड दैट इज़ द रीज़न. तो 416 आजकल तो ये नंबर 416 के मुश्किल से ही मिलते हैं. सेम आई डी सेम नंबर 416-454-6065. ओके सर, अपनी सर्विसेज के बारे में बताइएगा और क्यों आपसे राब्ता किया जाए मॉर्गेज के हवाले से.
उसका रीजन जी ये है कि मैं एक नंबर वन टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता. मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा किसी सूरत में भी. आपसे डिस्कशन होगी बहुत ब्रीफली होगी, मैं रॉयडे में आपको बता दूंगा कि मैं आपका काम कर सकता हूँ कि नहीं. नंबर टू कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, जो इतने अरसे से मैं करता आ रहा हूँ, तो वो उसको उसकी वजह से मेरे कॉन्टेक्ट अलहमदुल्ला बहुत एस्टेब्लिश हैं अंडरराइटर्स के साथ. अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज अगर मुझे कोई मुश्किल पेश आती है तो वो मसला मेरा हल हो जाता है. तो इस दो खास तौर पे इस रीजन, और जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि टाइम तो कभी भी मैं आपका वेस्ट नहीं करूंगा. जो काम होगा, चाहे आप फर्स्ट कमर, न्यू कमर हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आपको फर्स्ट मॉर्गेज चाहिए मेजर बैंक्स के साथ, या आपको प्राइवेट मॉर्गेज चाहिए, या आपका क्रेडिट कोई खराब है, कोई एम्प्लॉयमेंट या इनकम की इश्यू आ रहा है, तो मैं हर किस्म की करवा के मॉर्गेजेस अरेंज करके दूंगा. ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको टीडी या जो मेजर बैंक्स हैं सिर्फ मैं उनके साथ काम करता हूँ, मैं सबके साथ करता हूँ. मेरा सिर्फ में जो होता है ऑब्जेक्टिव जो मेरा होता है वो ये होता है आपका काम होना चाहिए. آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو, یہ نہ ہو کہ میں صرف بینک کے ساتھ کر رہا ہوں اور آپ کو ضرورت ہے پرائیویٹ مارگیج کی, تو پھر آپ کا ٹائم ہوگا, آپ کسی اور کو ڈھونڈیں گے. تو میں سب کچھ کرتا ہوں الحمدللہ ساری پروڈکٹس میرے پاس ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے اور یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا, اور جو بھی آپ کی ہے ریکوائرمنٹ کسی قسم کی وہ میں آپ کو رائٹ اوے بتا دوں گا اور ارینج کر کے دوں گا.
کوکب جاوید سے آپ ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیجیے گا. سر اپنا نمبر دیجیے گا.
416-454-6065.
آپ کا نمبر ہے کوکب جاوید, آپ ایک دفعہ رابطہ ضرور کر لیجیے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. اینی تھنگ ایلس؟ اور میں ایک پوئم آپ ہی کے ریفرنس سے پیش کرنا چاہتی ہوں. صاحب یہ کوکب جاوید کا نمبر آپ نوٹ کر لیجئے گا. مارگیج کے حوالے سے, ری فائنینسنگ کے حوالے سے, بزنس کے لیے لون آپ کو چاہیے, لائن آف کریڈٹ چاہیے, 416-454-6065 ان کا نمبر ہے. ایک اور پوئم کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں, بہت خوبصورت. اسے کہنا یہ دنیا ہے, اسے کہنا یہ دنیا ہے. یہاں ہر موڑ پر ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اندر تک اترتے ہیں, اب تک ساتھ رہنے کی, اکٹھے درد سہنے کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. اسے کہنا یہ دنیا ہے, یہاں ہر موڑ پر ایسے بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اندر تک اترتے ہیں, اب تک ساتھ رہنے کی, اکٹھے درد سہنے کی, ہمیشہ بات کرنے کی. اسے کہنا یہ دنیا ہے, یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے. اسے کہنا یہ دنیا ہے, یہاں ہر شخص, اسے کہنا یہ دنیا ہے, یہاں ہر شخص مطلب کی حدوں تک ساتھ چلتا ہے. جو ہی موسم بدلتا ہے, محبت کے سبھی رشتے, سبھی قسمیں, سبھی وعدے, سبھی رسمیں اچانک ٹوٹ جاتے. اسے کہنا بہت خوبصورت. ایک گیت کی طرف آپ کو لے کر کے چلتی ہوں, آپ اس گیت کو انجوائے کیجئے گا. گیت کون سا ماجد بھائی؟
گیت صاحب یہاں پر شیراز اپل کی آواز ہے اور جھکی جھکی بہت ہی خوبصورت گیت ہے. سماعت فرمائیے. 416-620-1778 ہمارا فون نمبر
ہے. چلتا ہے سمایوں بدلتا ہے, چھپا چھپا رہتا ہے میری یادوں میں کوئی, دن کے سارے پہروں میں, شام کی اداسی میں, رات کے اندھیروں میں یاد آتا ہے کوئی. جھکی جھکی آنکھوں میں, رکی رکی سانسوں میں, کیسے جانوں یار پیار کے کیسے کیسے رنگ راگ ہے. جیسے کوئی آس ہے کوئی پاس ہے, سایہ ہے اسی کا یا کہ میرا ہی احساس ہے. دادا پاپا نہیں سن, پاپا نہیں سن, دادا پاپا نہیں سن. لگتا ہے کہ جیسے کوئی آس ہے کوئی پاس ہے, سایہ ہے اسی کا یا کہ میرا ہی احساس ہے. دل کہتا ہے وہ جو بھی ہے میری آنکھوں میں اب آ بسے, اب دل سے ملے اس دل کی لے اور سر سے اس کا سر ملے. جھکی جھکی آنکھوں میں, رکی رکی سانسوں میں,
कैसे जानू यार प्यार के कैसे कैसे रंग राग है के तू कौन है क्या नाम है ख्वाबों में जो आती है मुझसे तेरा क्या काम है
दादा पापा निसा पापा निसा दादा पापा निसा पापा निसा
चाहता हूँ पूछूं के तू कौन है क्या नाम है ख्वाबों में जो आती है मुझसे तेरा क्या काम है तेरी आंखों में जो राज है मेरे दिल ने उसको पा लिया तेरे होठों पे नहीं क्यों आया वो गीत जो मैंने गा लिया झुकी झुकी आंखों में रुकी रुकी सांसों में कैसे जानू यार प्यार के कैसे कैसे रंग राग है ओ
आयशा ये तुम क्या सर पकड़ कर बैठी हो
घर में मेहमान आ रहे हैं और मुझे 10 जगहों पर जाना पड़ेगा ग्रोसरी के लिए
10 जगह क्यों एक ही जगह है फातिमा ग्रोसर्स
फातिमा ग्रोसर्स
जी हाँ फातिमा ग्रोसर्स मसाले ताज़ा सब्जियाँ फल हलाल गोश्त मैरिनेटेड मीट आइटम्स और स्पेशल बीफ स्टेक्स भी ग्रोसरी का सारा सामान साजो आवाज के रेफरेंस पर स्पेशल डिस्काउंट भी मैकलॉगलन और ब्रिस्टल के इंटरसेक्शन पर न्यू फातिमा ग्रोसर्स 512 ब्रिस्टल रोड वेस्ट ऑफ मिसिसागा 9058487000 फातिमा ग्रोसर्स सबसे जबरदस्त
नया बारबेक्यू एंड डिलाइट खाना हो कुछ मजेदार और दिल हो बेताब तो आ जाए नायाब जी हाँ नावल्टी पाकिस्तानी एंड इंडियन फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस टेक आउट बैंक्वेट एंड केटरिंग स्पेशल चिकन गोट बारबेक्यू और वेजी डिशेस और तो और नायाब ट्रेडिशनल नाश्ता सैटरडे एंड संडे टू ऑर्डर कॉल 9056768860 905-676-8860 15 Tandri Road in Mississauga. Nayab Barbecue Delight.
First mortgage, second mortgage, ya phir hove loan.
Socho na bas, bilkul bhi hone milao phone.
416-502-8000 स्ट्रेस चाहे लाख दा होवे या कख दा उस जिंदगी मुश्किल कर देता है बाकी बातें एक तरफ आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000
लाइसेंस नंबर 10845 इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड
अकाल 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 मॉर्गेजेस
अजीत सुनते हो
अब कह भी दो
कितनी दफा तो कह चुकी हूँ
मगर कब
अब कुछ कहना वहना नहीं है बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन नो ऑब्लिगेशन कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर कॉल शिराज 416-792-8792
रिंगिंग बजिंग हिसिंग टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ 416-792-8792 Ultimate Hearing Solution 416-792-8792
डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट दांत निकलवाने हैं लगवाने हैं क्राउन्स हैं ब्रिजेस हैं इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस के इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टलर के इंटरसेक्शन पे बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं अपॉइंटमेंट बनाइएगा साजो आवाज का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा डॉक्टर मुजीब काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट 905-457-8661
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगी आसान। 11 साल से ज्यादा तजर्बा और एक भरोसामंद नाम। हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जैस्मिन परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यूज, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जैस्मिन परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659, 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530।
जी सर, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहना चाहती हूँ आपको। एक पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे एक भाई ने, जिन्होंने ये मुझे पोस्ट भी भेजी है। न्यूज़ को मैं न्यूज़ के सेगमेंट में, यानी छः से सात के दरमियान ही हम चाह रहे थे कि हम कवर करें। आपको मालूम ही होगा कि ये 20 जुलाई का वाकया है कि इस्लामाबाद के सेक्टर G8 में एक बच्ची का सर तन से जुदा करके, नूर मुकद्दम इस बच्ची का नाम है, एक्स जो अम्बेसडर है उनकी ये बेटी थी, उसको मार दिया गया था। सैड, वेरी सैड। अब जो जिस शख्स ने इसको कत्ल किया है, कहते हैं उसने किसी और पे भी हमला किया था, जाफर इसका नाम है, और उस जाफर को उन्होंने अरेस्ट तो कर लिया, और कहते हैं पुलिस कहती है जब उसको अरेस्ट किया तो वो यकीनन अच्छी दिमागी हालत में था। अब पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया, यकीनन उसकी फैमिली एक वकील कर लेगी और वकील ये साबित करेगा कि इसकी ज़हनी हालत ख़राब थी। और मैंने आपसे कहा कि सिस्टम के बीच में फूल के साथ कांटे, काले के साथ सफ़ेद, ऑटोमेटिकली सिस्टम साथ आ गया। जब मैं इसकी बात कर रही हूं तो एक और चीज को भी जिक्र करना चाहती हूं। फजल वदूद साहब ने अभी थोड़ी देर में हमारे साथ शामिल, आपको याद होगा कि असलम बेग जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुआ करते होते थे, ये जियाउल हक साहब का दौर और जियाउल हक साहब के दौर के बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने थे। बल्कि बहुत से लोगों ने यह कहा था कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त के जनरल असलम बेग जो है जियाउल हक की मौत में उनका हाथ भी था। हालांकि उस तैयारे में ये इस्लाम मुल्तान से इस तैयारे ने उड़ान भरी थी। मुझे याद है कि लाहौर में मॉडल टाउन के साथ एक पुल बना था ये सब्जी मंडी के पास ना, और ये जो कसूर रोड थी हमारी मेन आगे की तरफ जाती थी, तो उसका 17 अगस्त को इफ्तिताह किया था जियाउल हक साहब ने। 17 अगस्त को उसका इफ्तिताह किया है कि नेवर फॉरगेट दैट, उस पुल का इफ्तिताह किया था। हाय अल्लाह, मुझे सड़क का नाम कसूर रोड ही उसको कहते थे, कसूर रोड, यस, जो मॉडल टाउन के बाहर बाहर से मेन बुलेवार्ड गुजरा करती होती थी ना, उसी पे आगे जाके वही कैंट के पास, और वो जहाँ से ऊपर कैंट की तरफ हम चले जाया करते थे, तो वहाँ पे ये पुल बना था। 17 अगस्त को जियाउल हक ने इसका इफ्तिताह किया था, 18 तारीख को इनका हादसा हो गया था। मैं आपको जिस चीज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ, वो असलम बेग की बात करी थी, तो जब फिर ये हुआ तो असलम बेग साहब के बारे में कहा गया कि शायद जियाउल हक को मरवाने वालों में असलम बेग साहब का हाथ था। जनरल असलम बेग हयात हैं, बकायदे हयात हैं, उन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी जिस बंदे के तहत, ही ऑल्सो आर्मी ऑफिसर रहे अपने ज़माने के, बल्कि ये वो शख्स है जिन्होंने जियाउल हक की तकरीर भी लिखी थी, परवेज मुशरफ की तकरीर भी, बहुत खूबसूरत राइटिंग स्किल्स हैं इनके, इन्होंने दो किताबें और भी लिखी हैं। अब ये बायोग्राफी तो जनरल असलम बेग की है, मगर इनकी जो इस किताब है, मैं आई विल डेफिनेटली रीड हिज बुक, मैं आज ही बल्कि जब इसकी डिटेल देख रही थी आई वॉज थिंकिंग के आई ऑर्डर हिज बुक। साहब साबिक आर्मी चीफ जनरल असलम बेग की सवाने हयात के नाम से इक्तदार की मजबूरियां, बड़ी कमाल की किताब है, इक्तदार की मजबूरियां, अंग्रेजी की किताब है, और इक्तदार, अब कहने को वो हमें इक्तदार में नजर आ रहे थे। बहुत से लोगों ने कॉन्स्परेसीज भी साथ ही जन्म ले लेती हैं कि शायद जियाउल हक को मारने वालों में, हालांकि जब तक जियाउल हक की जरूरत थी जियाउल हक से वो सब कुछ करवाया गया जो करवाया जाना चाहिए था, ठीक, और उसके बाद उनको मरवा दिया गया। और उस तैयारी के बीच में अगर आपको याद होगा अमेरिकन सफीर भी मौजूद थे और अमेरिकन अमला भी उसमें मौजूद था, उसमें पाकिस्तान आर्मी के बहुत से ऑफिसर्स मौजूद थे। साबिक आर्मी चीफ की किताब जो है इक्तदार की मजबूरियां, यानी अगर एक आदमी आपको प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नजर तो आ रहा है, और आपको पता है इस किताब का जो فرنٹ پیج ہے یعنی جو اس کا سر ورک ہے اس کے اوپر جو تصویر بنائی ہے وہ بالکل اقتدار کی مجبوریوں کی کے نام کے اوپر, کتاب کے نام کے اوپر یہ تصویر بنائی ہے. کہتے ہیں کہ اس میں جو اس کا سر ورک ہے اس میں ایک روبوٹ نما انسان ایک کچے دھاگے پر چل رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک کینچی نظر آ رہی ہے جو کہ اس دھاگے کو جس کے اوپر وہ چل رہا ہے کسی وقت بھی کاٹ سکتی ہے. ٹائٹل حیرت سے بھرپور تھا لیکن جب کتاب کا مطالعہ کیا, بہت سے لوگوں نے اس کتاب کو پڑھ بھی لیا, اب اس کتاب کے سیدھا سیدھا حصے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں خلاف توقع پاکستان فوج کے ایک سابق سربراہ نے اپنے سوانح حمری میں کچھ ایسے اعترافات کیے ہیں جو بالکل نئے پڑھنے والوں کے لیے نئے ہو سکتے ہیں. جنرل مرزا بیگ کی زبانی ان سچائیوں کا سامنے آنا, گھٹن زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکا, اتنے ہارڈ فیکٹس ہیں اس کتاب میں اقتدار کی مجبوریوں میں. اس کتاب کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جس نے لکھی ہے کرنل اشفاق, ان کا نام ہے, انہوں نے کرنل اشفاق نے اس سے علاوہ دو اور کتابیں بھی لکھی ہیں. کرنل اشفاق نے بہت سے پریزیڈنٹس ہیں ان کی سپیچز بھی لکھی تھیں, اور کرنل اشفاق جنٹل مین بسم اللہ اور جنٹل مین استغفر اللہ دو کتابیں اور بھی ان کی ہیں. 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے جب اقتدار پہ قبضہ کیا تھا تو جو ان کی سپیچ لکھی تھی 1999 میں, اکتوبر 1999 میں, وہ بھی جنرل اشفاق نے ہی لکھی تھی, کرنل اشفاق نے ہی لکھی تھی. کرنل اشفاق حسین ان کا پورا نام ہے. اس وقت کے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل مظفر عثمانی کے ساتھ مل کر, یعنی دو لوگوں نے مل کر, مظفر جنرل مظفر عثمانی اور کرنل اشفاق حسین, دونوں نے مل کے 1999 میں جو اکتوبر کی سپیچ تھی پرویز مشرف کی, ان دونوں لوگوں نے لکھی تھی. پرویز مشرف کی تقریر لکھنا ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری تھی لیکن جنرل مرزا اسلم بیگ کی سوانح عمری لکھ کر کرنل اشفاق نے قومی ذمہ داری ادا کی. اب یہ تحریر کو الگ, اگین اٹس بیٹر کہ اسد درانی صاحب اور بپن رواج جو ہیں انہوں نے آسٹریلیا میں, جاپان میں اور دبئی میں بیٹھ کے بات چیت کی اور اس کو سنہا جو ایک رائٹر ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے, ویئر ایز اسلم بیگ صاحب کی کتاب کو کرنل اشفاق حسین نے لکھا ہے, کم سے کم اپنا ہی کوئی رائٹر ہے. سالہ سال سے وہ کہتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے طیارے کے حادثے میں جنرل مرزا اسلم بیگ کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ ملوث تھے. یعنی آپ کو یاد ہوگا جب اصغر خان کے زمانے میں آرمی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرمی نے اصغر خان لوگوں کی فیورز دینے کے لیے لوگوں کو پیسہ بانٹا تھا, تو وہ پیسہ بانٹنے والے یہی تھے, اسلم بیگ صاحب بھی تھے. اور پھر ان کے اوپر یہ بھی ہے کہ جی ضیاء الحق کو مروا کے انہوں نے ان کی کرسی پہ قبضہ کیا تھا. جنرل صاحب نے اپنی سوانح عمری میں ان تمام الزامات کا جواب دیا جس میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بھئی ضیاء الحق کو مروانے والا میں نہیں تھا, کون تھا یا کون نہیں تھا, اور جو اصغر خان کیس میں جو پیسہ دیا گیا تھا, ہم نے آپ کے ساتھ ایک دن شیئر بھی کیا تھا کہ یہ پیسہ جو تھا نا حکومت کے ایما پہ دیا گیا تھا, ان کو کہا گیا تھا کس کس کو یہ پیسہ دینا ہے, بلکہ ایک جنرل صاحب بھی ہمارے ساتھ آئے تھے جس دن ہم نے یہ سوال کیا تھا. اسلم بیگ نے اعتراف کیا کہ 1964 میں جنرل ایوب خان کے مقابلے میں, یہ بات جنرل اسلم بیگ بھی جنرل رہے, آرمی میں رہے, اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں اقتدار کی مجبوریوں میں لکھا ہے کہ 1964 کا جب الیکشن ہوا تھا اور یہ الیکشن ایوب خان صاحب, جنرل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 47 میں پاکستان کی جب بنتا ہے اور پاکستان کے بننے میں قائد اعظم محمد علی جناح, آف کورس ان کی بہن فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے ساتھ اپنی زندگی کو فراموش کر کے بھائی کے ساتھ, اور یہ قوم کس طرح ان کی آواز پہ لبیک کہتی تھی, اور پھر پاکستان بننے کے بعد اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے پیچھے کون تھا, کیا تھا, کیا ہوا تھا, کیوں ان کو بر وقت امداد نہیں مل پائی تھی, اور پھر پولیٹیشنز جب انوالو ہوئے, چاہے وہ آرمی تھی چاہے وہ سول پولیٹیشنز انوالو تھے, انہوں نے ہر چیز کے بیچ میں جس کی لاٹھی تھی اس کی بھینس تھی. تو محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کو کنفائنڈ کر دیا گیا تھا, اور پھر کنفائنڈ کرنے کے بعد ایون جب وہ الیکشن کے لیے بھی آتی, کہتے ہیں کہ جب ایک بار وہ ریڈیو پاکستان پہ آ کے بولی نا, ان کو بڑے عرصے کے بعد اجازت ملی تقریر کرنے کی, تو جہاں پر وہ حصے پہ آئی تھی جس میں فاطمہ جناح ذکر کر رہی تھی کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب آخری دنوں میں بیمار تھے تو آپ को एम्बुलेंस भी लेने के लिए नहीं पहुंची थी, सही तौर पे तिब्बी मदद नहीं दी जा सकी थी, तो कहते हैं उनकी स्पीच के उस हिस्से को हलफ कर दिया गया था। तो अब जनरल असलम बेग ने अपनी ये किताब जो है इक्तदार की मजबूरियां, कर्नल अशफाक हुसैन ने इस किताब को लिखा। इस किताब में जनरल असलम बेग, अब देखते हैं जनरल असलम बेग का क्या बनता है, बड़े हार्ड फैक्ट्स उन्होंने इस किताब में बताए हैं। उन्होंने कहा है कि मोहतरमा फातिमा जिना की जो फेम थी या अवाम में पसंदीदगी थी एज कम्पेयर टू अयूब खान साहब, जनरल अयूब खान, मोहतरमा फातिमा जिना की पसंदीदगी कई गुना ज्यादा थी और उन इलेक्शंस को हैक किया गया था, कोट अन कोट्स में। 1964 में जनरल अयूब खान के मुकाबले में मोहतरमा फातिमा जिना को ज्यादा मकबूलियत हासिल थी, लेकिन उन्हें धांधली के जरिए हरा दिया गया था, जिससे मशरकी पाकिस्तान के अवाम में बददिली फैली थी। ऑफकोर्स पाकिस्तान हिंदुस्तान के लोग कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और मोहतरमा फातिमा जिना की आवाज पे लब्बैक कहते थे, और ये इवन जो बांग्लादेश आज का है और मशरकी पाकिस्तान, वहां के अवाम कायदे आजम मोहम्मद अली जिना और मोहतरमा फातिमा जिना की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उनको कन्फाइंड किया गया, फिर उनको हराया गया, तो उनको भी बददिली हुई। ये किताब इक्तदार की मजबूरियां, जो कि किताब जनरल असलम बेग की सवाने हयात है, उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बात को कलम किया है। उसमें जुलाई 1971 तक फौज ने मशरकी पाकिस्तान में, अब ये भी बड़ा हार्ड फैक्ट है, अब मुझे ये समझ नहीं आता कि अब किसके अगेंस्ट एक्शन होगा, जनरल असलम बेग के अगेंस्ट एक्शन होगा या कर्नल अशफाक हुसैन के। मगर अशफाक हुसैन तो सिर्फ ही इज जस्ट राइटर, एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने शेयर किए हैं वो जनरल असलम बेग साहब के शेयर किए हैं। और उन्होंने कहा है कि इस किताब में कि उन्होंने कहा कि जब 1971 में जब बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है, जनरल नियाजी वहां पे अपॉइंटेड थे, कहते हैं कि जो मुक्ति बामी के अगेंस्ट पाकिस्तान की आर्मी कोई जीत हुई थी, यानी एवरीथिंग वाज इन द कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, बट जनरल नियाजी में इतनी खुदी और इतनी अना आ गई हुई थी कि जनरल मिर्जा बेग कहते हैं, असलम बेग कहते हैं कि मैंने जनरल नियाजी को मशवरा दिया, ही वाज अपॉइंटेड देयर, तो जनरल नियाजी वाज चीफ ओवर देयर, तो जनरल असलम बेग कहते हैं कि मैंने जनरल नियाजी को मशवरा दिया कि हमारे कंट्रोल में हर चीज है, अब पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि इक्तदार जो है वहां के अवाम के सुपुर्द कर दिया जाए। जनरल नियाजी को यह बात कतन पसंद नहीं आई, कतन पसंद नहीं आई, कोट अन कोट्स में करती हूं। कहते हैं कि 1971 में, और ये किताब है इक्तदार की मजबूरियां, जनरल असलम बेग की किताब है, उसमें ये इस तरह से दर्ज है कि मशरकी पाकिस्तान में हालात को कंट्रोल कर लिया गया था, जिसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा असलम बेग ने, उस जमाने में ये जनरल असलम बेग 1971 में ये कर्नल मिर्जा असलम बेग थे, उन्होंने तहरीरी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला नियाजी को कहा कि अब फौज ने कंट्रोल हासिल कर लिया, इक्तदार अवाम को मुंतकिल कर दिया जाए, यानी इंतजामिया के सुपुर्द करके सियासी अमल को शुरू किया जाए। यह बात जनरल नियाजी को पसंद ना आई क्योंकि वह ताकत के नशे में चूर थे, उन्होंने ऐसे रिमार्क्स पास किए जो हमारे जनरल ऑफिसर कमांडेंट को पसंद ना आए और तलख कलामी हो गई। 3 दिन के अंदर अंदर कमांड तब्दील हो गई और जनाब मिर्जा असलम बेग अपनी इस किताब में लिखते हैं कि मैं जेरे अताब आ गया, मुझे ईस्ट पाकिस्तान से वापस भेज दिया गया वेस्ट पाकिस्तान की तरफ। उन्होंने एडमिरल एहसन और जनरल साहब ज्यादा याकूब अली खान का भी जिक्र किया जो सियासी अमल बहाल करने के हामी थे, यानी ये दो जनरल साहब ज्यादा याकूब भी जनरल नियाजी को कह रहे थे कि अब अवाम को या जो उनके वहां के लीडर्स हैं उनको इक्तदार मुंतकिल कर दिया जाए, मगर जनरल नियाजी जो थे वो नशे में चूर थे और इक्तदार में और जीत के नशे में चूर थे, एंड ही वॉज नॉट रेडी। सियासी अमल बहाल करने के हामी थे कौन कौन, दो मिर्जा असलम बेग भी थे जिनको उन्होंने वापस भिजवा दिया टू वेस्ट पाकिस्तान, इसके अलावा दो और जनरल, एडमिरल एहसन और जनरल साहबजादा याकूब अली खान, जो सियासी अमल बहाल करने के हामी थे। जब उनकी बात ना सुनी गई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी जो जनरल एहसन और जनरल साहबजादा याकूब, उन दोनों ने तो इस्तीफा दे दिया। कर्नल मिर्जा असलम बेग को वेस्ट पाकिस्तान से उठा के ईस्ट पाकिस्तान से उठा के वापस वेस्ट पाकिस्तान भिजवा दिया गया। जनरल मिर्जा असलम बेग अपनी इस किताब इकतदार की मजबूरियों में लिखते हैं, यही मुवक्कफ फैज अहमद फैज, हबीब जालिब, मेरे वालिद प्रोफेसर वारिस मीर समेत बहुत से सिविलियंस का था जो मशरकी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन के खिलाफ थे, लेकिन इन सबको गद्दार करार दिया गया, जबकि मिर्जा असलम बेग बाद में आर्मी चीफ बन गए। अब आपको बताइए, आर्मी चीफ भी जब बनते हैं तो उसमें भी कहा गया कि ये शायद जियाउल हक को मरवाने वाले ये थे और उन्होंने इक्तदार अपने नाम पर कर लिया। जनरल साहब की यह किताब इक्तदार की मजबूरियों में दावा किया है कि 1979 में वो जब मेजर जनरल थे, जनरल जिया ने अपने अफसरों की, अब ये बात सुनने वाली है, अब भुट्टो साहब को भी आपको बताइए कि भुट्टो साहब को भी मरवाने में जियाउल हक ने अपना रोल प्ले किया था, हालांकि अदलिया का पैगाम जाती है, अदलिया का जो फैसला था वो यूनानिमस नहीं था, एक फैसला नहीं था, कुछ लोगों ने उसके उनकी फांसी के खिलाफ, और भुट्टो साहब ने डायरेक्ट कत्ल तो नहीं किया था, कत्ल के ऑर्डर किए थे, फर्स्ट डिग्री मर्डर तो नहीं था, उन्होंने कत्ल तो नहीं किया था ना, मगर कहते हैं कि जब जनरल जियाउल हक ने, ये जो जर्नल्स थे और हाई कोर कमांड की जब मीटिंग हुई और वहां कहा गया कि अब भी भुट्टो के साथ क्या सलूक किया जाए, गौर करने की बात है, कहते मैं उस जमाने में मेजर जनरल था, जनरल जिया ने अपने अफसरों की राय मालूम की, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी जाए या ना दी जाए, जनरल बेग ने फांसी की मुखालिफत की और कहा कि इससे पंजाब और सिंध की नफरत बढ़ेगी, उन्होंने ये जिक्र भी किया कि जनरल जिया ने मस्जिदुल हराम में, अच्छा अब जब उन्होंने उसे मांगा तो जियाउल हक ने शाह खालिद के साथ काबा शरीफ में यह वादा किया था, क्योंकि शाह खालिद ने वादा लिया था जियाउल हक साहब से कि तुम भुट्टो साहब को फांसी नहीं दोगे। अब जब जियाउल हक ने मशावरत की अपने हम असर जो अफसर थे, तो जनरल बेग ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने कहा कि इसको फांसी ना दें, और मैंने उनकी याद दहानी भी कराई कि देखिए आपने शाह खालिद के साथ मस्जिद हराम के में ये वादा किया था कि आप भुट्टो साहब को फांसी नहीं देंगे, लेकिन उन्हें अपने वादे का पास नहीं किया। भुट्टो की फांसी के बाद जनरल बेग को चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया गया। जनरल साहब ने दावा किया, अच्छा एक बल्कि एक और चीज बड़ी कमाल की थी, ये अगली आ गई है, जनरल साहब ने दावा किया अपनी इस किताब में कि 1985 में उन्होंने जनरल हमीद गुल के साथ मिलकर एक रिपोर्ट लिखी और जनरल जिया की उस सिफारिश की कि साफ सुथरे इलेक्शन करवा दें, 85 की बात है कि आप इलेक्शन करवा दें और इकतार पाकिस्तान फौज को पीछे हट जाना चाहिए। जनरल जियाउ क्या कहते हैं, जनरल जिया ने कहा तुम चाहते हो कि फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ जाए, ओह देखिए साहब। बाद में जनरल जिया ने गैर जमाती इंतखाबात करवाए और मोहम्मद खान जुनी जो वजीर आजम बने। 1987 में जनरल जिया ने जनरल जाहिद अली अकबर को वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाने का फैसला किया, लेकिन वजीर आजम जुनीजो ने जनरल बेग का नाम तजवीज़ किया जिसे जनरल जिया ने कबूल कर लिया। जनरल जिया ने डायरेक्ट वोट इनको नहीं डाला था, मगर क्योंकि वजीर आजम जुनीजो साहब, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो फिर जियाउल हक ने उसको कबूल कर लिया। मुख्तलिफ दलायल और शवाहद की बुनियाद पर दावा किया है कि जनरल जिया के तैयारी का हादसा कोई साजिश नहीं थी बल्कि तकनीकी खराबी के बायस पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया था, अगर उनकी साजिश होती तो वो इक्तदार पर खुद कब्जा कर लेते, लेकिन उन्होंने हादसे के 3 घंटे के अंदर अंदर इक्तदार उस वक्त के चेयरमैन सेनेट गुलाम इसहाक के सुपुर्द कर दिया। हालांकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जियाउल हक को मारने वाले या उस हादसे का भाई, ऑफकोर्स हो सकता है जनरल बेग ने ना कराया हो तो कोई तीसरी पार्टी, बड़ी पार्टी शामिल हो सकती है, क्योंकि उस तैयारी के बीच में अमेरिकन एम्बेसडर भी मौजूद थे। 1988 के इंतखाबात के बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम बन गई। मिर्जा बेग ने मोहतरमा के साथ अपने जाती इख्तलाफात को पसे पुश डालकर एतराफ किया है अपनी इस किताब में कि 1990 के अवाइल में भारत ने हमारी एटमी तनसीबात तबाह करने का मनसूबा बनाया तो मोहतरमा ने साहेबजादा याकूब अली खान को दिल्ली भेजा। ये बड़ा प्यारी किताब है और यकीनन हम इसको इक्तदार की मजबूरियां, और इसका जो फ्रंट पेज है ना वो बड़ा कमाल का है कि दिखने में आपको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नजर आता है, मगर साहब वहां पर भी डोरी कोई और हिला रहा होता है दुनिया में हर जगह के। अब अगर आप रिसेंटली इमरान खान साहब का ये एक बयान सुने, और इमरान खान साहब जब ये अपनी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر اور اس خطے میں امن اور سکون کے حوالے سے. تو ایک صحافی نے ان سے پوچھا تو انہوں نے پیچھے مڑ کے ایک سوال میں جواب دیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنا چاہتے ہیں مگر نریندر مودی جو ہے وہ آر ایس ایس کی پالیسیز کو لے کر کے آگے چلنا چاہتے ہیں, این آر ایس ایس کسی اور کو برداشت کرنا نہیں چاہتی. ٹھیک, تو بہرحال یہ تھی ایک صورتحال, یہ بھی بات ہو گئی. وہ نور مقدم کا میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ نور مقدم کو کہتے ہیں کہ جس شخص نے مارا اس کا سر کو تن سے جدا کیا, یہ شخص نے اور کسی کو بھی ہراس کیا تھا, الٹیمیٹلی اس کو اریسٹ کر لیا گیا. شازیہ جی میرا خیال ہے یقیناً اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. ایک ملاقات اور ملاقات ہم آپ کے ساتھ کروائیں گے جناب فضل ودود کے ساتھ. ریسنٹلی نا میری ملاقات ہوئی کسی سے اور انہوں نے کہا کہ فائنینشیل ایڈوائزر, اینڈ آئی سیڈ اکاؤنٹنٹس کی بات ہو رہی تھی کہ اگر آپ کا اکاؤنٹنٹ اچھا ہے نا تو دا گڈ اکاؤنٹنٹ میک اے ہیوج ڈفرنس ان یور لائف, اینڈ گڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے آپ کو $30-40 مہینہ پہ نہیں ملتا. آف کورس وہ اسٹریٹجیز بھی پھر اسی حساب سے کرتے ہیں, بٹ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ یو ہیو ٹو ہیو اے گڈ فائنینشیل پلانر. تو اب میں تو بہت سارے پلان فضل ودود کو بھی جانتی ہوں, تو میں نے کہا اوکے واٹ فائنینشیل پلانر کین ڈو. ہی سیڈ فائنینشیل پلانر آپ سے پوچھتا ہے اور جو آپ کے پاس فنڈز ہیں ان کو کہاں آپ کو سنبھالنا چاہیے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. وہ گائیڈ لائن آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کو دیتے ہیں اور اکاؤنٹنٹ اس کے لحاظ سے کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا مایا کو کھینچے مایا کر کر لمبے ہاتھ. فضل ودود ہمارے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟
جناب وعلیکم السلام, آپ کو گزشتہ عید مبارک, کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک.
ہاں بکرے کا گوشت تو آپ نے مجھے بھیجا نہیں.
بکرے کا گوشت ابھی ہم نے خود نہیں دیکھا, ابھی میں وہاں پہ باہر بیٹھا ہوں ابھی لینے کے لیے.
وہ تو کنگ لوگ ہیں آج, ان کی تو بادشاہت ہے آج.
کیا بات ہے جی, ان کی ڈیفینیٹلی دے آر دا وی وی آئی پیز. ہاں جی
صحیح. اب سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ فائنینشیل پلانر کیا رول پلے کر سکتا ہے, اور اکثر اوقات میرے جیسے نالائق یہ سمجھتے ہیں کہ میرا پیسہ ہے مجھے پتا ہے کہ کیسے یوز کرنا ہے. ہاؤ فائنینشیل پلانر الانگ ود دا اکاؤنٹنٹ کین میک اے ہیوج ڈفرنس ان مائی سیونگ اینڈ ٹو گرو مائی بزنس؟
گریٹ کوشچن. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اگر کسی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے تو اوور دا کاؤنٹر سے کام نہیں چلتا, یو نیڈ ٹو سی یور سرٹیفائڈ ڈاکٹر جو کہ آپ کو صحیح پرسکرپشن دے جس کا آپ کو فائدہ ہو. اسی طرح جب بات یہ آتی ہے, اور ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ یہ بہت رواج ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے ہر بندے کو ہر چیز کا پتہ ہے, یہ ہمارا ایک کامن پرابلم ہے. پالیٹکس کی بات میں کر رہا ہوتا ہوں جس کو کچھ بھی نہیں پتا پالیٹکس کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن از ناٹ رائٹ. اب آ جاتے ہیں فائنینشیل پلانر اینڈ اکاؤنٹنٹ اور دا لٹل بٹ آف اے ڈفرنس بٹوین دا ٹو. دیکھیں اکاؤنٹنگ جو ہے یہ پاسٹ کی بات کو ہسٹوریکل ڈیٹے کی بات ہے, جو ایکسپینسز ہم نے کل کیے آج کیے اس کو کمپائل کر کے اس کو ٹیکس پے کرنا. جبکہ جب فیوچر کی بات کی جاتی ہے تو یہ رول ہے فائنینشیل پلانر کا. اور فائنینشیل پلانر جو ہے اس میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انشورنس ہے شاید انویسٹمنٹ ہے. ایکچولی فائنینشیل پلانر جو ہے اوور آل پلان کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہاں سے اس کنارے تک پہنچنا ہے تو آپ نے اس کو کیسے پلان کرنا ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ اچھی انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں ٹائم پہ, ریل اسٹیٹ لے لی وغیرہ وغیرہ, پیسے بھی بنے, لیکن کسی کو یہ کم پتا ہوتا ہے کہ کیا یہ سارے پیسے ان کی پاکٹ میں جانے والے ہیں یا بیچ میں, میں کہتا ہوتا ہوں کہ راستے میں لٹ گئے. یعنی کیا ہوا کہ جب آپ ریٹائر ہوئے یا آپ نے دنیا سے کوچ کیا اور اپنی فیملی کو وہ پاس آن کرنے کا وقت آیا, ایز ہائی ایز 53% یو کوڈ لوز ٹو دا سی آر اے. تو اس کے لیے فائنینشیل پلانر کی امپورٹینس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, بیکاز ہی از ٹرینڈ اور شی از ٹرینڈ ٹو ہیلپ یو ٹو سی اینڈ پلان فار دا فیوچر. اکاؤنٹنٹ ڈز دا جاب فار دا کرنٹ اینڈ دا پاسٹ, अक्सर ये मिसकंसेप्शन है, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जीपी के पास जाते रहिए जनरल प्रैक्टिशनर के पास, लेकिन अगर आपके फ्रैक्चर है तो या कोई और मसला है तो फिर जीपी आपको, जनरल प्रैक्टिशनर फैमिली डॉक्टर आपको ऑर्थोपेडिक या कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजेगा। फाइनेंशियल प्लानर का काम भी इसी तरह है, फाइनेंशियल प्लानर कैन इंश्योर यू कि जो आपने जमा जोड़ किया है पहले तो कैसे करें और उसको कैसे टैक्स एफिशिएंट वे के साथ आप अपनी छोटी छोटी बचतों को एक अच्छी तरह एक्यूमुलेट करके अपनी रिटायरमेंट सॉलिड कर सकते हैं और अपनी जनरेशन के लिए उसे पास ऑन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
बहुत शुक्रिया फजल बतूत साहब, आप अपना नंबर दीजिएगा।
जी 905-607-5000।
बहुत शुक्रिया फजल बतूत साहब से आपने बात की, और फजल बतूत का नंबर 4905-607-5000। मशवरे की कोई फीस नहीं है, रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर नाजिया रहमान का भी मैं जिक्र करना चाहती हूँ कि अगर आप डेंटल ट्रीटमेंट, क्राउन, ब्रिजेस, मेरे एक बहुत प्यारे भाई हैं, मुझे कॉल करके कहने लगे कि डेंचर बनाने वाले। देखिए साहब, ये जो डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट एवरी डे किसी का डेंचर बनना है, किसी का ब्रिज बनना है, तो बेहतर है कि अगर आपका डेंटिस्ट आपको रेफर करता है तो दैट इज मच बेटर, यू कैन गेट अ बेटर डील एंड बेटर सर्विसेज। डॉक्टर नाजिया रहमान लेटेस्ट डेंटिस्ट्री के लिए अपना नाम रखती हैं। दो क्लिनिक्स हैं इसके, एक 150 येलो एवंस बुलेवार्ड पे और एक क्लिनिक इनका मिसिसागा में ही, फाइनेंशियल ड्राइव एंड मिसिसागा रोड पे 65 माउंट पैलियर ड्राइव पे आपको मिलेगा डॉक्टर नाजिया रहमान। यू कैन नॉट मिस इट। 9058721100। ग्रिल एंड चिक्स भी इसी इलाके में है, और ग्रिल एंड चिक्स, ऑफ कोर्स ग्रिल एंड चिक्स की ब्यूटी ये है कि ऑल ग्रिल्ड आइटम्स, नथिंग फ्राइड। मंडे को स्पेशल हुआ करता है ग्रिल एंड चिक, और ग्रिल एंड चिक 15 माउंट पैलियर स्ट्रीट के ऊपर आपको मिलेगा। यू कैन नॉट मिस इट, जरूर तशरीफ लाएं। आजकल तो बल्कि उनका एक लंच स्पेशल भी आ गया है, आप बल्कि इनके रिव्यूज जरूर चेक कीजिएगा। नाम आप जहन में रखिएगा, ग्रिल एंड चिक। मेरा बेटा कह रहा था फूड जितनी इसकी स्पेशल है, इनका नाम जो है इज अ कॉमन नेम, इट मस्ट हैव अ स्पेशल नेम। 9054560500। अ वंडरफुल पर्सन, एक लिटिल यंग गर्ल इज विद मी एंड लेट्स सी व्हाट शी इज गोना डू फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम?
अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नेम
रमेशा।
Eid Mubarak
to everyone. Eid Mubarak, Ramesha. Eid Mubarak. Do you know any song for Eid?
आप कैसे हो फिर?
मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरे listeners का भी हाल पूछ लो ना रमेशा।
How's everybody else?
Everybody else is good, so I am telling you on their behalf, Ramesha. So, what did you do on Eid? आपने क्या किया ईद वाले, उर्दू में बताओ, ईद वाले दिन आपने क्या किया?
I don't know how to say it in Urdu.
अच्छा, so
we went to a carnival, huh? And we went to Popeye.
You went to Popeye. My God, your mummy and baba are very cheap. They must have taken you to grill and a chicken.
And we went to a carnival, but it didn't even cost money for the ride, you just have to wait in line.
Okay, so your mama and baba should have taken to grill in a chick and you should have. You are such a wonderful girl, and let me tell you one thing, once you go
next time I can maybe.
Yeah, you got to go there, but let me tell you, once you go there you must put on your opinion on the Google as well. How did you like the food? That is grill and a chick. Okay. So, Ramesha, can you sing a song for me?
Next time if I go, can you come with me?
Oh, you want me to go with you?
Yeah.
I love you. I would love to go with you.
Okay. Maybe next month?
Oh, maybe next month, okay. You are the boss, whatever you tell me.
Maybe next month or next week?
I will make it next week.
Okay, अभी आपको कुछ आता कुछ आपने think करना?
Wait, first let me think, okay?
Okay.
Can I think?
On the radio, we don't have much time to think about it. We got to be instant.
Imabash, everyone, and I hope everyone having a great time.
Everybody will have a great time. What did you wear on the Eid day? What was the dress?
It's not like dark green or light green. It's in the middle.
Not dark green or middle green. So it was an olive color. Is that right?
Yeah. But we even got these nice two rings. I chose a heart ring that says love you. And it got